का था, रूह वही, रूप नया।
नकली नाक भाग चार में आपने सुना कि फरीदी का भेस बदलकर जाबिर, इंस्पेक्टर माथुर, जज साहब, रशीद दुजमा और गजाला को बंदी बना करके ले आया था। मगर उसने ऐसा क्यों किया? आखिर उन किताबों से जाबिर का ऐसा कौन सा ताल्लुक है जो वो फरीदी से हासिल करना चाहता है? क्या वो किताबें जाबिर के हाथ लगेंगी या फरीदी जाबिर को शिकस्त देकर कैदखाने में डालेगा? ये सब जानने के लिए सुनिए इस कहानी का आखिरी भाग। रात के 2 बजे थे। मोटर कार तेजी से सड़क को पीछे छोड़ती हुई भागी जा रही थी। फरीदी ड्राइवर से और तेज चलने को कह रहा था। लेकिन मुझे तो डर लग रहा है, हमीद ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा।
क्यों?
फरीदी ने पूछा।
इसलिए कि अभी यमराज उस आदमी की रूह पर कब्जा करने के लिए यहाँ आएंगे और वो कहीं भूल से हम लोगों की तरफ ना घूम पड़े। तब
हमीद ने इस तरह कहा कि सबको हंसी आ गई।
तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आओगे हमीद,
फरीदी बोला,
और यही शिकायत मुझे आपसे है। बैठे बिठाए एक मुसीबत मोल ले ली। ना मालूम बेचारी शहनाज का क्या हाल है,
हमीद ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा। अच्छा, अब अपनी बकवास बंद करो।
लेकिन मैं फिर आपसे कहता हूँ, जैसा कि मैंने उसकी बात सुनी है, उससे यही अंदाज़ा होता है कि वे हुंडियाँ जो उसने हासिल की हैं 20 तारीख के बाद बेकार हो जाएंगी। आज 15 तारीख है। मेरा ख्याल है कि वो कलकत्ता में बिल्कुल नहीं ठहरेगा, वो सीधा जिनेवा जाएगा। इसलिए हम लोगों को कलकत्ता पहुँचने के बाद हवाई अड्डे पहुँचना चाहिए, हमीद ने कहा।
तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, हम लोग सीधा हवाई अड्डे और समुद्री अड्डे पर पहुंचे। सही बात है, फरीदी बोला। रास्ते भर फरीदी ड्राइवर से कार की रफ्तार तेज करने को कह रहा था। सुनसान सड़क पर कार अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी, लेकिन फरीदी चाहता था कि किसी तरह उड़कर जल्दी से कलकत्ता पहुंच जाए।
ड्राइवर और तेज, फरीदी ने कहा।
हुजूर, कार अपनी पूरी रफ्तार में है, उसने जवाब दिया।
फरीदी अच्छा कहकर चुप हो गया और कलकत्ता पहुंचने के बाद के प्रोग्राम के बारे में सोचने लगा। दिन काफी चढ़ चुका था। भूख के मारे हमीद का बुरा हाल था, क्योंकि आज कई रोज से उसे ठीक से खाना नहीं मिला था। लेकिन फरीदी के डर से वो बिल्कुल खामोश था। कलकत्ता करीब आ गया था, क्योंकि आबादी का सिलसिला शुरू हो गया था। थोड़ी देर बाद कार शहर में दाखिल हुई। हवाई अड्डे पर पहुंचकर फरीदी को मालूम हुआ कि कल रात से इस वक्त तक कोई जहाज जिनेवा नहीं गया। अब फरीदी ने ड्राइवर से समुद्री अड्डे पर चलने को कहा। वहां जाकर नौसेना के अफसर से मिला और अपना आई कार्ड दिखाते हुए बोला,
हम लोग रामगढ़ से एक बहुत बड़े मुजरिम का पीछा करते हुए आ रहे हैं। वो भेस बदलने में बहुत माहिर है, उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। क्या कोई ऐसी सूरत है कि जिनेवा उतरने से पहले ही उसे पकड़ लिया जाए?
यहां से वायरलेस किया जा सकता है, लेकिन जब वो भेस बदलने में माहिर है तो उसे पहचाना कैसे जा सकता है, नौसेना के अफसर ने जवाब दिया।
नहीं, वायरलेस से काम नहीं चलेगा। क्या यू बोट से हम लोग जहाज का पीछा नहीं कर सकते?
लेकिन यू बोट के लिए आपको इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और कमांडेंट चीफ अफसर ऑफ ईस्टर्न कमांड से इजाजत लेनी होगी, ऑफिसर ने कहा।
अच्छी बात है, फरीदी यह कहता हुआ सब लोगों को लेकर इंस्पेक्टर जनरल के बंगले की तरफ चला गया।
जैसे ही माथुर ने अपना कार्ड भेजा, आईजी ने फौरन उन लोगों को बुलवाया। वो माथुर को देखते हुए बोला,
मैं तो खुद कल आपके यहाँ आ रहा था। वो इंटरनेशनल डाकू है और उसने सरकार से कुछ जरूरी कागजात भी हासिल कर लिए हैं। उसका गिरफ्तार होना बहुत जरूरी है,
फरीदी और माथुर ने सारे हालात बताए। जिसे सुनकर आईजी ने फरीदी से कहा,
मिस्टर फरीदी, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उसका पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन क्या आपको इसका यकीन है कि वो उसी जहाज से जिनेवा गया होगा और उसने अपना हुलिया बदल लिया होगा? आप उसे कैसे पहचान सकते हैं,
आईजी ने पूछा। ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए, लेकिन अगर जरा भी देर हो गई और वो जहाज जिनेवा पहुंच गया तो फिर वो हमारे हाथ नहीं लग सकता, फरीदी बोला।
अच्छा, तो मैं अभी कमांडेंट इन चीफ साहब से मिलकर आता हूँ, आप लोग मेरा यही इंतजार कीजिए। वो बोले, मैं थोड़ी देर के लिए बाजार जाऊंगा, क्योंकि अगर जहाज पर उसने हम लोगों को असली हालत में देख लिया तो मुश्किल होगी। फरीदी ने कहा, आईजी साहब तो कमांडेंट इन चीफ के यहाँ चले गए और फरीदी हमीद को लेकर बाजार चला गया। माथुर और इंस्पेक्टर वहीं उन लोगों का इंतजार करने लगे। फरीदी बाजार से कुछ सामान खरीद कर जब लौटा तो मालूम हुआ कि अभी आईजी साहब नहीं आए। वो उन सब लोगों को चपरासी के साथ बाथरूम में ले गया। थोड़ी देर बाद फरीदी मारवाड़ी, माथुर साहब प्रोफेसर और इंस्पेक्टर सेठ और हमीद जहाज के खलासी बने हुए बाथरूम से बाहर निकले। आईजी ने कार से उतरते हुए जब उन लोगों को देखा तो फिर मुस्कुरा कर बोले, आप लोगों ने खूब भेस बदला है। अच्छा, ये ऑर्डर लीजिए, आप लोगों को और किसी चीज की जरूरत है? आईजी ने सवाल किया। जी नहीं, अब बाकी काम को हम लोग खुद अंजाम दे लेंगे, फरीदी ने कहा और सब लोगों को लेकर कार से समुद्री अड्डे की तरफ रवाना हो गया। आईजी ने नौसेना के अफसर को फोन कर दिया था। यू बोट यानी पनडुब्बी बिल्कुल तैयार खड़ी थी। फरीदी ने नौसेना के अफसर को हुक्मनामा देते हुए कहा, शायद आपने जहाज के कप्तान को तो वायरलेस कर ही दिया होगा। हाँ, मैंने उनको ज़रूरी हिदायतें दे दी हैं और जहाज की रफ्तार कम करने को भी कह दिया है, अफसर ने जवाब दिया। बस ठीक है, हमीद जल्दी बैठो। फरीदी पनडुब्बी के पास आकर बोला और सब लोग जल्दी जल्दी उसमें सवार हो गए और यू बोट तेजी से पानी के अंदर चल पड़ी। बाप रे बाप, कितना खतरनाक सफर है, हमीद डर कर बोला। फरीदी ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और वक्त देखते हुए बोला, इस वक्त 11 बजे हैं, हम लोग उससे सिर्फ 5 घंटे पीछे हैं। फरीदी के चेहरे पर अजीब तरह के रंग पैदा हो गए थे जिसे सिर्फ हमीद ही समझ सकता था, इसलिए उसने उस वक्त फरीदी को छेड़ना मुनासिब न समझा। यू बोट तेजी से समंदर की गहराइयों में भाग रही थी। शाम हो चुकी थी, फरीदी की परेशानियां बढ़ती जा रही थीं। उसने कप्तान से पूछा तो मालूम हुआ कि सिर्फ 1 घंटे का फासला और रह गया है। फरीदी हमीद वगैरह को जरूरी हिदायतें देने लगा। 1 घंटे के बाद जहाज का सिग्नल मिलना शुरू हुआ और थोड़ी देर बाद यू बोट जहाज के बिल्कुल करीब थी। जहाज 2 मिनट के लिए रुका और ये लोग जल्दी जल्दी जहाज के बिल्कुल निचले हिस्से में घुस गए। जहाज फिर चल पड़ा। कप्तान ने उन लोगों को गुप्त रूप से सेकेंड क्लास के कैबिन में पहुंचा दिया और वे लोग मुसाफिरों की हैसियत से सफर करने लगे। खाना खाने का वक्त हो गया था। ये लोग खाने की मेज पर आकर बैठ गए जहां दूसरे मुसाफिर पहले से ही बैठे हुए थे। हमीद ने खलासी के भेस में आकर मेज साफ की जिस पर खाना लगाना था। ये लोग खाना खाने लग गए। फरीदी खाना खाता जाता था और मुसाफिरों को गौर से देखता भी जाता था, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। खाना खाने के बाद सब लोग अपने कैबिन में लौट आए। थोड़ी देर बाद हमीद भी आ गया। कुछ पता चला? फरीदी ने पूछा। नहीं, मैं करीब करीब पूरा जहाज घूम आया, हमीद ने जवाब दिया। अच्छा, अब तुम जाकर सो रहो, सुबह देखा जाएगा। इस वक्त हो सकता है किसी को हम लोगों पर शक हो जाए, फरीदी ने कहा। हमीद चला गया। फरीदी, माथुर और दोनों इंस्पेक्टर अपने अपने बिस्तरों पर लेट गए। दिन भर की दौड़ धूप और रात भर जागने की वजह से वो लोग फौरन सो गए। सुबह सवेरे ही फरीदी की आंख खुल गई। वो अपने कपड़े वगैरह ठीक करके कैबिन से बाहर निकला। करीब करीब सभी मुसाफिर जाग चुके थे। ऊपर डेक पर कुछ लोग खड़े सुबह के सुहावने मंजर और समंदर की ठंडी हवाओं का आनंद ले रहे थे। फरीदी भी डेक पर चढ़ गया और समंदर की तरफ देखने लगा कि अचानक उसकी निगाह एक अंग्रेज पर पड़ी जो चमड़े के एक बटुए से तंबाकू निकालकर सिगरेट बना रहा था। फरीदी ने गौर से बटुए की तरफ देखा और उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं और वो धीरे धीरे डेक से उतरने लगा। डेक से उतरते ही वो फौरन अपने कैबिन में आ गया। माथुर और इंस्पेक्टर दोनों ही जाग चुके थे। आप लोग जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए, दुश्मन मिल गया है, फरीदी ने माथुर से कहा। कहाँ? माथुर ने हैरत से पूछा। अंग्रेज का भेस बदले हुए डेक पर खड़ा है। आप लोग अभी अपने अपने पिस्तौल जेब में रखकर डेक पर फौरन पहुंच जाएं, लेकिन उसको जरा भी शक ना होने पाए। मैं कप्तान के पास जा रहा हूं,
ताकि हमीद को आगाह कर दूं। फरीदी ये कहता हुआ जल्दी से कप्तान के कैबिन की तरफ चला गया और हमीद को हिदायतें देकर फौरन डेक पर पहुंच गया। वो अंग्रेज इत्मीनान से सिगरेट के लंबे लंबे कश ले रहा था। जाबिर, अगर तुम अपनी जगह से जरा भी हिले तो गोली तुम्हारे सीने के पार होगी। उसने पलटकर देखा तो एक मारवाड़ी सामने पिस्तौल ताने हुए खड़ा था। अंग्रेज के चेहरे पर परेशानी फैल गई, लेकिन फौरन ही मुस्कुराहट पैदा करता हुआ बोला, मिस्टर, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं वो। इतने में एक फायर की आवाज सुनाई दी। एक अंग्रेज चकराकर जमीन पर गिर पड़ा। माथुर और वे दोनों इंस्पेक्टर उस पर झपटे। फरीदी चिल्लाया, लेकिन वे लोग बिल्कुल करीब आ चुके थे और अब माथुर का पिस्तौल उस अंग्रेज के हाथ में था। हवा में दो फायरों की आवाजें गूंजी। अंग्रेज के हाथ से खून बह रहा था और पिस्तौल जमीन पर पड़ा था। अब अंग्रेज माथुर और इंस्पेक्टर की पकड़ में था। आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया, फरीदी ने माथुर से कहा।
लेकिन भाई, अभी तक मेरी समझ में ये नहीं आया कि पहला फायर कैसा था,
माथुर बोला। वो देखिए, फरीदी ने डेक के किनारे इशारा किया, जहां एक आदमी खून से लथपथ पड़ा था। ये जाबिर का आदमी है जो पीछे से मेरे ऊपर हमला करना चाहता था और हमीद ने उस पर फायर कर दिया। फायर की आवाज से उसने ये फायदा उठाया जिसे आप लोग समझ ना सके, और ये दूसरा फायर आप पर ही करना चाहता था कि मैंने गोली चला दी। जाबिर को गिरफ्तार करके फरीदी ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस कर बांध दिया, और अब ये लोग उसी यू बोट से जाबिर को लेकर वापस हो रहे थे। रास्ते में हमीद और माथुर ने फरीदी से बहुत सारे सवाल किए, लेकिन उसने ये कहकर टाल दिया कि अब तो अदालत में ही मेरा बयान सुनना। नवाब ज़ादा शाकिर के कत्ल, शहर में आगजनी, खून, सरकारी कागजात की चोरी और दूसरे इल्जामों के सिलसिले में जाबिर का मुकदमा आज अदालत में पेश होने वाला था। नवाब ज़ादा शाकिर के कत्ल के सिलसिले में कुंवर जफर अली खां पर दो मुकदमे थे। अदालत में मुलजिम के कटघरे में उन्हें भी देखा जा सकता था। कुंवर जफर की आंखें आज पहली बार छलक रही थीं। उन्होंने फरीदी की तरफ कई बार देखा और इशारों ही इशारों में रहम की दरख्वास्त की। जाबिर अकेला खड़ा था। तमाशाइयों का तांता ऐसे भयानक आदमी को देखने के लिए बेताब था। उनकी समझ में नहीं आता था कि एक आदमी ऐसी बातें किस तरह कह सकता है जो उनकी समझ से ऊपर है। खुद हमीद भी जाबिर के हालात को ज्यादा नहीं जानता था। सिर्फ यही एक मामला ऐसा रूखा साबित हुआ था जिसमें उसे कोई औरत ना मिल सकी थी, और अगर मिली भी तो जबरदस्ती बीवी बनकर धोखा दे गई। आखिर वो औरत कौन थी? गजाला और नवाब रशीदुज़्ज़मा बहुत खुश थे। उनका महबूब फरीदी जाबिर को पकड़ लाया था। कैसी कैसी गलत फहमियों को उन्होंने अपने दिल में जगह दी थी। बेचारा तारिक अपने नेवले शाकी के अफसोस में था, मगर फिर भी नाखुश नहीं था। उदास सिर्फ सईदा थी। उसका दिल दुआएं मांग रहा था कि कुंवर साहब बेगुनाह साबित हो। इस अदालत में लेफ्टिनेंट बाकर की गैर मौजूदगी बुरी तरह खटक रही थी। लोगों का ख्याल था कि वे ऐन वक्त पर आएंगे। हालांकि हर शख्स इंस्पेक्टर फरीदी का बयान सुनने के लिए बेताब था। किस्सा कुछ इस तरह पेश आया था कि केस बहुत मजेदार बन गया था। ठीक 10 बजे मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई। पुलिस के स्थानीय अफसरों के बयान के बाद इंस्पेक्टर फरीदी का बयान शुरू हुआ। मेरे बयान के सारे सबूत फाइल में मौजूद हैं, फरीदी ने अपना बयान देते हुए कहा। मैं सबसे पहले ये गलत फहमी दूर कर देना चाहता हूं कि लेफ्टिनेंट बाकर और जाबिर दो अलग अलग शख्सियतें हैं। दरअसल बाकर और जाबिर एक ही शख्सियत के दो नाम हैं। जाबिर कौन है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालना जरूरी है। पढ़ाई का गलत इस्तेमाल और इंसानी ख्वाहिशों से आगे बढ़ना किस हद तक इंसान को गुमराह कर सकता है, इसकी जिंदा मिसाल जाबिर की पिछली जिंदगी के वाकयात हैं। मुजरिमों के कटघरे में खड़ा हुआ यह भयानक शख्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से फिलॉसफी की डिग्री ले चुका है और जर्मनी के ज्यूरिक कॉलेज से साइंस में एमए कर चुका है। कई दिनों तक ये प्रोफेसर भी रहा। इसकी मां जर्मन औरत थी, बाप हिंदुस्तानी। इसकी पैदाइश हिंदुस्तान में हुई। हालात की बदकिस्मती से इसने बचपन में अपने हिंदुस्तानी साथियों के हाथों काफी बेइज्जती बर्दाश्त की और उस वक्त से इसके दिल में हिंदुस्तानियों के खिलाफ नफरत का जज्बा पैदा हुआ। जवानी में ये लंदन पहुंचा, वहां से फिलॉसफी में ऊंची तालीम लेने के बाद ये जर्मनी गया। वहीं साइंस के तजुर्बों और नाजीवाद की बढ़ती हुई ताकत ने इसके दिमाग को दूसरे रास्तों पर डाल दिया। डॉक्टर गोयबल्स के जासूसी डिपार्टमेंट में रहने के बाद इसने अपना भेस बदलने, आवाज बदलने का तरीका सीखा और इस सिलसिले में खुद भी इसने कई तजुर्बे किए। लड़ाई के वक्त एक तबाही वाला गैस बनाते वक्त इसकी नाक पर कुछ भाप आ गई और वो गल गई। ये इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा था। जर्मनी की हार के बाद इसकी माली हालत गिरने लगी। इसने कीमिया बनाने का शौक पैदा किया और उसी शौक के बिना पर इसकी मुलाकात रंजीत नगर के राजकुमार संग्राम सिंह से हुई और उसी शौक ने राजकुमार की जान ले ली। राजकुमार की जींसी बीमारियां सिर्फ एक अफसाना है, जाबिर के जहर ने उन्हें मारा है। उनसे वो नुस्खा इसे मिल तो ना सका, लेकिन रंजीत नगर के राजकुमार बनने का शौक इसे हिंदुस्तान खींच लाया। इसके पहचानने वालों में से दो शिकार हो गए और इस वक्त साजिद के रूप में गवाह है। बंबई में ही इसे पता लगा कि रामगढ़ का मशहूर नवाब नवाबजादा शाकिर सोना बनाने का नुस्खा रखता है। उसके पास कुछ ऐसी किताबें हैं जिनके बताए हुए उसूलों पर अमल करके इंसान हजारों साल तक जिंदा रह सकता है। जाबिर ने शाकिर से खतों के जरिए दोस्ती बढ़ानी चाहिए, मगर इसमें इसे कामयाबी नहीं मिली। वो रामगढ़ आया। नवाब ज्यादा शाकिर के काम में शामिल कुंवर जफर अली खां भी थे। सोना तैयार हो जाने के बाद नवाब ज्यादा शाकिर ने कुंवर साहब को हिस्सा देने से इनकार कर दिया। अपनी एक किताब पर कुंवर साहब ने नवाबजादा को धमकी दी कि अगर उन्होंने इनका हिस्सा न दिया तो ये उसे जान से मार डालेंगे। और उसके बाद रात में ये फिर नवाबजादा से मिले। इन्होंने अपना हिस्सा भी मांगा और अपनी तहरीर भी वापस मांगी। जाबिर की जानकारी में ये सारी बातें थी। उसने जज सिद्दीक अहमद के बेहतरीन खूबसूरत शिराजी पामोज कबूतर के जोड़े में से एक कबूतर चुरा कर और उसे जहरीला छल्ला पहनाकर नवाबजादा के बरामदे में छोड़ दिया। नवाबजादा कबूतरों के रसिया थे, मगर वो कबूतर उठाते ही छल्ला लगा और जहर फैल गया। ठीक उसी वक्त कुंवर जफर अली उनके पास आए। नवाबजादा को मुर्दा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने अपनी तहरीर फाड़ी और भाग गए। जाबिर का आदमी उनकी उस हालत की तस्वीर हासिल कर चुका था। शायद लेफ्टिनेंट बाकिर की तरफ से दायर किए गए मुकदमे में उनके खिलाफ यही सबूत पेश किया जाता। कुंवर जफर अली बेगुनाह हैं। गुस्से और झुंझलाहट की उस तहरीर पर उन्हें पछतावा था और उन्होंने नवाबजादा के नाम एक माफीनामा भी लिखा जो रिकॉर्ड में शामिल है। इतना कहने के बाद फरीदी रुका। सुनने वालों पर बिल्कुल खामोशी थी। सईदा का चेहरा खुशी से दमक रहा था। थोड़ी देर बाद ठहरने के बाद फरीदी ने अपना बयान शुरू किया। जाबिर ने जफर और नवाब रशीद उज़्ज़मा वगैरह को मेरे खिलाफ करने और मेरे रास्ते में रोड़ा अटकाने के लिए मेरा भेस बदलकर उनके घर पर डाका डाला और उनके घर से उनकी किताब, जो दरअसल नवाबजादा शाकिर की जायदाद थी, ले उड़ा। उधर नवाबजादा शाकिर की लाइब्रेरी में इत्तेफाक से मेरे हाथ वे किताबें लग गईं जिनकी जाबिर को तलाश थी। लेफ्टिनेंट बाकिर का किस्सा सुनने के बाद ही मेरा माथा ठनका था। बंबई के मशहूर सेठों के यहां जवाहरात की चोरी की खबर भी मेरे पास थी। लाइब्रेरी ही में मुझे वो पर्चा मिला जिसमें नवाबजादा शाकिर के सौतेले भाई के कुछ हालात थे। लेफ्टिनेंट बाकिर और जाबिर का एक ही दिन बंबई जाना मुझे और खटका। जाबिर को यह यकीन हो गया कि मैं उसका पीछा जरूर करूंगा। उसने मेरे रोकने के तमाम इंतजाम भी किए, मगर वो नाकाम रहा। अलबत्ता हालात ने हमारा साथ ना दिया। मैं इत्तेफाक से डिब्बा कट जाने की वजह से उसका पीछा ना कर सका और हमीद को जाबिर ही की एक पिट्ठू ने धोखा दे दिया। बंबई से वापसी पर वो शाकिर के सौतेले भाई के पूरे मालूमात हासिल कर चुका था। उनकी एक तस्वीर और पुराने खानदानी हालात हासिल करके वो यहां आया। फर्जी सबूत और दलीलें। खानदान में सईदा के अलावा और किसी रिश्तेदार का वजूद न होने से उसको कामयाबी मिल गई। उसने अपने आप को सचमुच बाकिर साबित करने के लिए बड़े पापड़ बेले। अफसरों की दावतें करके उसने उन्हें यह भी मौका नहीं दिया कि वो उसके बारे में कुछ सोच सके। सईदा के नाम जायदाद हवाले करके उसने उसका भी मुंह बंद कर दिया। अपने साथ लाए हुए एक बेकार नौजवान को अपना लड़का मशहूर करके और खुद ही उसे सिगरेट में जहर देकर उसकी मौत पर फर्जी आंसू बहाकर इसने सबका दिमाग बेकार कर दिया। किसी शख्स का ख्याल भी इस तरफ न जा सकता था, लेकिन कुंवर जफर अली मुझसे और उससे दोनों से शक करते थे। आग लगने से पहले वे नवाबजादा शाकिर के मकान के पिछले हिस्से की तरफ गए थे। कई दिन पहले उन्होंने कुछ लोगों को शक की हालत में वहां घूमते हुए देखा था। यही कुरेद उन्हें इस तरफ ले गई थी। उसी वक्त आग लगी, वे भागे, जाबिर के आदमी ने गोली चलाई और वे जख्मी हो गए। ये गलत है कि वे पुलिस की गोली से जख्मी हुए। अस्पताल में ऑपरेशन के बाद निकाली गई गोली इस बात का सबूत है। मुझे उसी वक्त शक हुआ था और इसीलिए मैंने नवाब रशीदुज़्ज़मा वगैरह को माथुर साहब के घर जाने की हिदायत की थी। ये लोग गए मगर लौट आए। मुझे अपने होटल के कमरे में पिछले दिनों की आग और कत्ल के वाकयात से ये अंदाजा हो गया था कि मेरे ऊपर भी हमला होगा। इस बीच में तारिक से मुझे खबर मिली कि लेफ्टिनेंट बाकर मुझसे अकेले में बातें करने का इरादा रखते हैं। मैंने होशियारी से वे दोनों किताबें जिनकी जाबिर को तलाश थी छुपा दी और खुद बाकिर के घर की तरफ चला गया। उनके जाने के बाद ही मुझे लाइब्रेरी में जाबिर और नवाबजादा शाकिर के खत मिले। मुझे ऐसे कागजात भी मिले जिनके बिना पर जाबिर बाकिर बना फिरता था। मैंने उनकी वो किताब भी देखी जो वो इंसानी अंगों की बनावट पर लिख रहा था। उसकी लिखावट की ताजगी ये बता रही थी कि अभी लिखी गई है। दूसरी तरफ मेरे जहन में जाबिर की तहरीर भी थी। हालांकि मुझे यकीन हो गया था कि जाबिर और बाकिर एक ही शख्सियत के दो नाम हैं। जाबिर का उसी वक्त आना और मुझे तहखाने में बंद कर देना मेरे लिए और यकीनी हो गया था। मुझे कैद करने के बाद उसने मेरा भेस बदल कर एक तरफ मुझे मजबूर करके किताबें हासिल करनी चाहिए, दूसरी तरफ हमीद को कैद करके एक कांटा रास्ते से हटाया, तीसरी तरफ नवाब साहब वगैरह से जबरदस्ती तहरीर लिखवाकर उनसे रुपए भी ऐंठे और उन्हें मेरा दुश्मन भी बना दिया। बयान लंबा होने के बावजूद वो शख्स गौर से सुन रहा था। फरीदी फिर रुका और हमीद की तरफ मुस्कुराते हुए उसने अपना बयान शुरू किया। मैं किस तरह छूटा ये सिर्फ इत्तेफाक है। जाबिर ने मुझे 24 घंटे का टाइम दिया था। 18 घंटे बीतने के बाद शाम को जाबिर का नौकर जब तहखाने में लैंप रखने आया तो बिजली की तरह मेरे जहन में ख्याल गूंजा। मैंने नौकर के जाते ही अपने बंधे हुए हाथों से लैंप तोड़ डाला और बत्ती की आग से अपने हाथ में बंधी हुई रस्सी को जलाता रहा। हाथ खुलने के बाद मैं आजाद हो गया। दूसरे ही कमरे में हमीद बंद था और उसे छुड़ाने के लिए मैं निकल पड़ा। हमीद ने जाबिर की बातचीत सुनी और उसका ख्याल था कि वो कलकत्ता जाएगा, इसलिए कि कुछ अहम सरकारी रिकॉर्ड की कॉपियां उसके हाथ लग गई थी जिन्हें वो जिनेवा में बेचना चाहता था। सईदा के बयान ने यह बात पक्की कर दी है और हमें कलकत्ता से समुद्री सफर से जाबिर को गिरफ्तार करना था। मेरा बयान खत्म हो रहा है, लेकिन अब एक बात रह जाती है और वो है कीमिया का नुस्खा। जाबिर उसकी तलाश में था। मैं नहीं जानता था कि वो उसे हासिल कर सका है या नहीं। बहरहाल मुझे वो मिल नहीं सका। फरीदी बैठ गया। अदालत के कमरे में सन्नाटा था। ऐसा मालूम होता था जैसे तूफान अपनी भयानक आवाज के बाद ठहर गया हो कि अचानक जंजीरें खड़खड़ाईं और जाबिर ने इशारा किया। जज साहब के हुक्म पर उसका मुंह खोल दिया गया और उसने कहा, फरीदी साहब ने मेरे बारे में जो बयान दिया है बिल्कुल सही है। मेरे बारे में जानकारी जिस मुश्किल से जर्मन जबान में लिखे हुए खतों से उन्होंने इकट्ठा की है उसके लिए वे तारीफ के काबिल हैं। मुझे अपने जुर्म का इकबाल है, लेकिन मेरी कहानी अभी अधूरी है। मेरी आरजू है कि मेरे हाथ खोल दिए जाएं। मैं वादा करता हूं कि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचेगा, बल्कि एक छिपे हुए राज का खुलासा भी हो जाएगा।
रिदी साहब जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता। लोगों में काना फूसी और तरह तरह की बातें शुरू हो गईं कि इतने में जज साहब के हुक्म से चार सिपाहियों के अलावा और दो सिपाही संगीने लेकर उसके पास खड़े हो गए। हमीद का हाथ अपनी पिस्तौल पर आया और जाबिर की हथकड़ियां खोल दी गईं। उसने सुकून से कहा, फरीदी साहब, किमिया का नुस्खा और आपकी जानकारी में गुप्त जगह पर रखी हुई किताबें मैंने हासिल कर ली थी। किताबें समंदर में डूब गईं, लेकिन नुस्खा मेरे पास है। मैं जो चाहता हूं उसे हासिल कर लेता हूं। कहते हुए उसने अपने चेहरे से बनावटी नाक उठाई। दहशत और खौफ से गजाला और सईदा की चीखें निकल गईं। भयानक चेहरा और भयानक हो गया था। जाबिर ने कहकहा लगाया। अपनी नाक के अंदर से उसने कागज की पुड़िया निकाली। ये है वो नुस्खा फरीदी साहब। मैं जिस्मानी अंगों की बनावट का माहिर हूं। ये नाक बड़ी कारामद है। फरीदी नुस्खा लेने के लिए आगे बढ़ा, मगर ठहरिए, इसमें जहर है। सोना हासिल करने की कोशिश का नतीजा जहर ही हुआ है। कहते हुए वो पुड़िया उसने मुंह के अंदर रख ली। आधा सेकंड भी ना हुआ था कि वो चकरा कर गिर गया और नाक हाथ से फौरन छूट गई। थोड़ी देर बाद हंगामा खामोशी में बदल गया। जाबिर की लाश से बड़ी बदबू आ रही थी और अजीब तरह का नीला पानी उसके मुंह से निकल रहा था। कमरे में गहरा सन्नाटा हिचकोले ले रहा था। आप सुन रहे थे कहानी नकली नाक का अंतिम भाग। इसे लिखा था इब्ने सफी ने और आप तक गाथा के जरिए इसे पहुंचाया नैनी दीक्षित ने।